हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जोया अबीर के साथ हुए किस के कारण थोड़ी शर्मा रही थी। जब वो खाने के लिए नीचे हॉल में आई तो रिया ने बताया कि अकरम और अबीर बाग में बातें कर रहे हैं। ये सुनते ही जोया बाग में पहुंच गई और उसे शक होने लगा कि वे दोनों जरूर कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो उसे नहीं बताना चाहते। जोया दोनों के पास पहुंची, लेकिन दोनों ने किसी न किसी तरह से विषय बदल दिया और जो बातें वे कर रहे थे जोया को पता नहीं चलने दिया। अचानक अबीर की किसी बात पर जोया जोर जोर से हंसने लगी। अबीर बेख्याली से उसे देख रहा था। अबीर ने पहली बार जोया को इस तरह हंसते हुए देखा था, लेकिन अचानक जोया हंसते हंसते रोने लगी। जोया को रोता देख अबीर का दिल टूट गया और उसने रोती हुई जोया को अपने गले से लगा लिया। जोया भी अबीर का साथ पाकर उससे चिपट गई और जी भर कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कितने सालों का उसमें रुका हुआ गुबार आज अबीर के स्नेह से बाहर निकल रहा था। कितनी देर तक जोया अबीर के गले लगकर रोती रही। अबीर ने उसे बहुत अच्छी तरह संभाला। वो जोया को अपनापन दिखा रहा था, उसे एहसास दिला रहा था कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसके पास है, उसकी रक्षा करेगा और जीवन भर उसका ध्यान रखेगा। तभी अचानक जोया को अपनी गर्दन के पास कुछ सुई चुभने का एहसास हुआ। इससे पहले कि जोया कुछ समझ पाती, उसकी आंखें भारी भारी होने लगीं और जोया एक पल में बेहोश होकर अबीर की बाहों में झूल गई। उसके बेहोश होने के बाद अबीर ने उसके आंसुओं से भरे चेहरे को प्यार से देखा, उसके आंसू पोंछे और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, आई एम सॉरी वाइफी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन ये करना जरूरी था तुम्हारी भलाई के लिए। मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तभी अबीर का फोन बजने लगा और वो किसी से बात करने लगा। जल्दी ही वो जोया को अपनी शानदार गाड़ी में बैठा कर चल पड़ा। अगली सुबह अरहम ने अपनी माँ गजाला जी से फिर अबीर के घर जाने के लिए कहा। गजाला जी ने ठान लिया कि वो अबीर राठौर से आमने सामने बात करेंगी। ये सोचकर वो उसके घर की ओर रवाना हो गईं। एक बेहद स्टाइलिश कपड़ों में खड़ा आदमी अमेरिका के बोर्ड की ओर देख रहा था, जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, वेलकम टू दी अमेरिका। वहां खड़ा शख्स अमेरिकी जमीन पर खड़े होकर एयरपोर्ट से बाहर आते हुए स्टाइल से अपने काले रंग के चश्मे को उतारते हुए बोला, फाइनली मैं यहाँ आ गया हूँ जोया, और यहाँ आते ही यहाँ की हवाओं में मुझे तुम्हारी खुशबू आने लगी है। बस कुछ देर और की दूरी है, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये कहकर अरमान एक शैतानी हंसी हंसा। तभी अरमान के सामने लगभग 7 गाड़ियां आकर रुकीं। उन सभी गाड़ियों में अरमान के गांठ थे। अरमान के पहुंचते ही सभी आदमी वहां आ पहुंचे और अरमान को सैल्यूट किया। एक बहुत खूबसूरत कार का दरवाज़ा अरमान के लिए खोला गया और अरमान जल्दी ही उस शानदार गाड़ी में सवार होकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। अरमान का कुछ बिजनेस अमेरिका में भी था, यहाँ भी उसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, इसलिए यहाँ भी उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अरमान सबसे पहले अस्पताल पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जोया अमेरिका के एक बहुत ही पावरफुल आदमी के साथ है। वो कौन है, कैसा है, क्या करता है, ये वो नहीं जानता था, क्योंकि रॉबिन को भी इसकी जानकारी नहीं थी। रॉबिन को जितना पता था उसने बता दिया था, इसलिए अरमान ने सबसे पहले अरहम से मिलना जरूरी समझा। महर ने राजवीर से कहा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी। आखिरकार तुम मेरे पति हो, मेरे परमेश्वर हो, भला मैं तुम्हारी जान कैसे ले सकती हूँ। लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया उसकी सजा तो मैं तुम्हें दूंगी ही राजवीर सिंघानिया। ये कहकर महर चली गई। तभी 2 गार्ड वहां आए और उन्होंने महर के इशारे पर उसके बेडरूम में भेज दिया। वे दोनों गार्ड राजवीर को कुर्सी समेत महर के कमरे में छोड़ आए। राजवीर इस बीच बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, जाने दो, तुम लोग नहीं जानते हो मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। राजवीर जो मुंह में आ रहा था वो बोलता जा रहा था, लेकिन उन गार्ड्स ने मानो अपने कानों में रुई ठूस ली हो। किसी ने भी राजवीर की बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसे सीधा महर के कमरे में छोड़ आए। राजवीर मन ही मन कुढ़ रहा था। वो अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी महर वहां आ गई। राजवीर मेहर को देखकर चौंक गया, क्योंकि मेहर ने एक बहुत ही छोटी सी रेड कलर की नाइटी पहनी हुई थी और ऊपर से डार्क रेड लिपस्टिक लगा रखी थी। मेहर अपने आप में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। मेहर को ऐसी हालत में देखकर राजवीर के शरीर में उसकी तलब महसूस होने लगी। राजवीर उसे प्यार से देख रहा था और उसका दिल चाह रहा था कि वो उसे एक बार फिर से कुचल डाले, अपने नीचे गिराकर मसल डाले। जब मेहर अपनी गोरी टांगों को राजवीर के ऊपर रखकर एक अदा से बोली, डू यू वॉन्ट मी, तब राजवीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, ये तो बहुत अच्छी तरह से उससे माफ़ी मांग रही है। अगर मेहर ने आज उसे खुश कर दिया तो वो उसे माफ कर देगा और हमेशा खुश रखेगा। राजवीर अपने मन में ही सवाल जवाब करते हुए अपने प्लान बनाने लगा। जब मेहर ने उसे डू यू वॉन्ट मी कहकर प्रपोज किया, तब राजवीर ने हाँ में सर हिला दिया। राजवीर के इस तरह सर हिलाते देख मेहर जोर जोर से हंसने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, एक मेड वहां आ गई और दरवाजे पर खटखटाने लगी। मेहर ने उसे अंदर आने के लिए कहा। मेड ने कहा, मैडम कोई आपसे मिलने आया है। ये सुनते ही मेहर चहक उठी और राजवीर की ओर देखकर बोली, हाँ जाओ, उन्हें यहाँ भेज दो और फिर सबके सब अपने घर चले जाना और कल आना। तब वो नौकरानी हल्का चौंक गई और सोचने लगी कि चलो कम से कम आज अपने परिवार के साथ तो समय बिताएंगे। ये सोचकर वो जल्दी से नीचे चली गई। तब राजवीर, जो उसे देख रहा था, बोला, कौन आया है यहाँ, किसे बुलाया है तुमने मिलने के लिए और उसे अपने कमरे में क्यों बुला रही हो? मेहर ने राजवीर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और स्टाइल से चलते हुए उसके पास गई और उसके होठों को हल्का सा चूम कर बोली, जस्ट वेट एंड वॉच हस्बैंड। ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगी। तभी मेहर के कमरे का दरवाजा खोला और उसमें से एक अधेड़ उम्र का गहरे रंग का आदमी आया और मेहर को गले लगा लिया। मेहर को गले लगाते ही उसकी नज़र बेड के ठीक सामने एक कुर्सी से बंधे हुए राजवीर पर पड़ी। राजवीर को देखते ही उसने मेहर को खुद से अलग कर दिया और मेहर से बोला, ये सब क्या है, ये आदमी कौन है और तुमने इसे बांध कर क्यों रखा है? तब मेहर बोली, ये मेरा पति है और इसे हम दोनों की नज़दीकियाँ देखनी थीं, इसलिए इसे बांध कर यहाँ रखा है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर आदित्य रॉय था। मेहर के इस जवाब पर वो उसे गहरी नज़रों से देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, बाप रे बाप, ये लड़की तो बड़ी ही चालू चीज निकली। मैंने तो सोचा था इसे इस तरह से मजबूर कर दूंगा कि ये मेरी हर रात को रंगीन बनाने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन ये तो बड़ी कुटिल चीज निकली। इसे मजबूर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आदित्य रॉय को इस तरह सोच में गुम देखकर मेहर ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया और बोली, क्या हुआ सर, आप कहाँ गुम हो गए हो? तब आदित्य रॉय चौंक कर बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। तब मेहर बड़ी ही बेहिचक बोली, तो इंतज़ार किस बात का, क्या हम दोनों अपना खेल शुरू करें? ये सुनते ही मिस्टर रॉय के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने बिना देरी किए मेहर के होठों पर हमला कर दिया।
राजवीर ये देखकर चिल्लाने लगा, नहीं नहीं मेहर, ऐसा मत करो। याद रखना, अगर मेरे हाथ खुल गए या मैं आज़ाद हो गया तो मैं तेरे इस जिस्म की बोटी बोटी नोच लूँगा। मेहर का ये तेज दहाड़ था, लेकिन मेहर को उसके कुछ भी बोलने की कोई परवाह नहीं थी। वो तो आदित्य के साथ किस करने में बिजी थी। देखते ही देखते आदित्य के हाथ उसके पूरे जिस्म पर चलने लगे और जल्दी ही वो उसकी नाइटी भी उतार फेंकता है, जो सीधी राजवीर के मुंह पर जा गिरती है। फिर जल्दी ही वे दोनों बेड पर पहुंच जाते हैं और एक दूसरे में समा जाते हैं। मेहर के गोरे जिस्म पर आदित्य का काला बदन ऐसा लग रहा था मानो चौदहवीं के चांद पर काला बादल। जल्दी ही उन दोनों की मदहोश आवाज़ उस कमरे में गूंजने लगी, जो राजवीर के कानों में जहर घुलने जैसे असर कर रही थी। राजवीर ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लीं और बस अब उसके कानों में उनकी मदहोश भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजवीर को अपनी बेबस हालत पर रोना आ रहा था। उसकी बीवी आज उसकी आंखों के ठीक सामने किसी और की हो रही थी। अरमान अस्पताल पहुंच चुका था और जल्दी ही वो अरहम के सामने बैठा हुआ था। अरहम की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अरमान से आंखें मिला ले। अरमान ने भी कुछ देर बैठकर उसे देखा और फिर बोला, जोया कहाँ है?